कशिश ने कहा, चलो तुम्हारी दीदी इंतजार कर रही होगी, और रास्ते में कुछ खिला भी देना, मुझे इतनी टेंशन में और इतना बोलने से भूख लग गई है। इस बार ईशान उसकी बात सुनकर हैरान नहीं हुआ, क्योंकि अब कशिश की खाने की क्षमता का अंदाज़ा लग चुका था उसे। दोनों साथ में बाहर पहुंचे तो रजनी उनका इंतजार करती मिली। तीनों पुलिस जीप में बैठे और जीप विश्वनाथ मंदिर के विपरीत दिशा में चल पड़ी, जहां अभिषेक अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ रहता था। मम्मी माधुरी जी, पापा अरविंद जी और छोटी बहन शिखा। अरविंद जी धीरज जी के बचपन के दोस्त थे। उनके अपने परिवार ने उनके मुश्किल की घड़ी में उनका साथ छोड़ दिया था, पर अरविंद जी ने उनके अंतिम घड़ी तक दोस्ती के रिश्ते को बखूबी निभाया था। उनकी सरकारी नौकरी थी और अभिषेक की भी सरकारी नौकरी थी। अभिषेक और रजनी हमउम्र थे और बचपन में ही उनका रिश्ता जुड़ना तय हो गया था। इत्तेफाकन दोनों बच्चे साथ खेलते कूदते बड़े हुए और बचपन की दोस्ती वक्त के साथ प्यार में बदल गई। दोनों की रजामंदी से उनका रिश्ता पक्का कर दिया गया। सगाई भी हो चुकी थी, पर शादी से पहले धीरज जी दुनिया को अलविदा कह गए। रजनी ने ईशान के लिए शादी करने से इनकार कर दिया था। अभिषेक को कहा भी था कि किसी और लड़की से शादी कर ले, पर वो और उसका परिवार आज भी इंतजार कर रहे थे। और इसी इंतजार को खत्म करने के लिए, अपनी दीदी का प्यार लौटाने के लिए, ईशान इतना बड़ा नाटक करने को तैयार हो गया था। बनारस की संकरी गलियों से निकलते हुए जीप अभिषेक के घर के बाहर आकर रुकी। आगे से रजनी और पीछे से कशिश और ईशान साथ ही बाहर निकले। शाम का वक्त था तो अभिषेक के घर पर सब मौजूद थे और आंगन में बैठकर परिवार के साथ वक्त बिता रहे थे। रजनी के अंदर आने से पहले ही नौकर ने सबको आगंतुकों के आने की सूचना दे दी, और घर की होने वाली बहू के आने की खबर सुनकर सभी उसके स्वागत में उठकर खड़े हो गए। अभी वे गेट की ओर कुछ कदम बढ़े ही थे कि उनकी नज़र गेट से अंदर आते रजनी, ईशान और कशिश पर पड़ी। जहां रजनी और ईशान को देखकर वे सभी प्रसन्न हो गए, वहीं उनके साथ आती कशिश को देखकर कुछ कुछ असमंजस में पड़ गए। कशिश को वे जानते नहीं थे और न ही पहले कभी उसको यहां देखा था। उस पर उसकी मांग में भरा सिंदूर, गले में मौजूद मंगलसूत्र और सबसे बड़ी बात, ईशान का उसका ऐसे हक से हाथ थामना सबकी परेशानी और हैरानी की वजह बन गई थी। ईशान के साथ आज तक रजनी के अलावा किसी लड़की को नहीं देखा था उन्होंने, इसलिए कुछ अचंभित से थे वे। तीनों अंदर आए। रजनी ने अरविंद जी और माधुरी जी का आदर सहित चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया तो दोनों ने उसे आशीर्वाद दे दिया। शिखा भाभी पुकारते हुए उसके गले लग गई। रजनी के बाद ईशान कशिश के साथ आगे बढ़ा, पर इससे पहले कि वो कशिश के साथ उनके पैर छू पाता, अरविंद जी ने कशिश की तरफ इशारा करते हुए ईशान को देखते हुए पूछा, ईशान ये कौन है आपके साथ? हालांकि कशिश का ये रूप और उसे ईशान के साथ देखकर सिर्फ उन्हें ही नहीं बाकी सबको भी कहीं ना कहीं उनके रिश्ते का अंदाज़ा हो गया था, पर शायद उनका दिमाग इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने सीधे ईशान से ही सवाल कर लिया। पर जवाब में ईशान कुछ कहता उससे पहले ही रजनी ने कशिश के कंधे को एक तरफ से थामते हुए सबको देखकर गंभीर स्वर में कहा, पापा जी ये कशिश है, कशिश मिश्रा, ईशान की पत्नी। रजनी ने जैसे ही आखिरी के शब्द कहे, वहां खड़े लोगों के चेहरे के रंग ही उड़ गए। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उनकी हैरान परेशान अविश्वास भरी निगाहें ईशान की तरफ घूम गई। अभिषेक, जो रजनी को देख रहा था, उसकी बात सुनकर बेचैनी से अचंभित सा ईशान को देखने लगा। ईशान, रजनी क्या कह रही है? तुमने शादी कर ली? कब, कैसे और हमें बताया क्यों नहीं? कशिश कौन है, कहाँ से है और तुमने अचानक से शादी कैसे कर ली? उसने ये शादी मेरे लिए की है। रजनी के शब्द सुनकर एक बार फिर सब चौंक गए। रजनी ने पहले ईशान और उसके बीच शादी को लेकर जो बहस हुई थी उसके बारे में उन्हें बताया, फिर ईशान ने जो कहानी उसे सुनाई थी वह कहानी सबको सुना दी। अभी भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, पर ईशान रजनी को जितना प्यार करता था वे इन बातों के सच होने पर एतबार कर सकते थे। सारी बात सबको बताने के बाद रजनी ने अरविंद जी को देखकर कहा, पापा जी आप तो जानते हैं, अगर ईशान के इस तरह से शादी करने की बात घर में सबके और लोगों के सामने आई तो क्या होगा? फिर दोनों ने जिस तरह से शादी की वो भी सही नहीं था, पर शायद तब हालात ही ऐसे रहे होंगे। फिर अभी दोनों ही बच्चे हैं, दुनियादारी की समझ नहीं उन्हें, तो भावनाओं में बहकर उन्होंने ये कदम उठा लिया और मैं उनके इस भूल को सुधारना चाहती हूँ। अभी कशिश को लेकर घर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए आज की रात उन्हें यहाँ रहने दीजिए। कल सुबह मैं दोनों के साथ दिल्ली जाकर कशिश के माता पिता से बात करूंगी। अगर उनकी इस रिश्ते के लिए हाँ होती है तो सबकी रजामंदी से समाज के सामने कशिश और ईशान की शादी करवा देंगे, और अगर वे नहीं माने तो यहाँ आकर मंदिर में दोनों की दोबारा शादी करवा देंगे, जिससे किसी को उनके रिश्ते पर सवाल उठाने का मौका न मिले। रजनी ने बहुत सोचने समझने के बाद इस परेशानी का ये हल निकाला था। अरविंद जी ने उसकी बात सुनी, फिर कुछ पल सोचने के बाद गंभीरता से बोले, आपने बिल्कुल सही सोचा है बेटा, कशिश बहू आज यहाँ आराम से रहेंगी, कल आपके साथ हम भी चलेंगे बहू के माता पिता से बात करने और उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वे मानते हैं तो धूमधाम से दोनों की दोबारा शादी करवा देंगे, और अगर नहीं मानते हैं तो हम कशिश बहू के पिता के तौर पर उनका कन्यादान करेंगे और धूमधाम से उन्हें इस आंबियन से विदा करेंगे। इससे किसी को ईशान और उनके रिश्ते पर कोई सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। रजनी ने बहुत सोचने समझने के बाद इस परेशानी का ये हल निकाला था। अरविंद जी ने उसकी बात सुनी, फिर कुछ पल सोचने के बाद गंभीरता से बोले,
आपने बिल्कुल सही सोचा है बेटा। कशिश बहू आज यहाँ आराम से रहेंगी। कल आपके साथ हम भी चलेंगे बहू के माता पिता से बात करने और उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वे मानते हैं तो धूमधाम से दोनों की दोबारा शादी करवा देंगे, और अगर नहीं मानते हैं तो हम कशिश बहू के पिता के तौर पर उनका कन्यादान करेंगे और धूमधाम से उन्हें इस आंगन से विदा करेंगे। इससे किसी को ईशान और उनके रिश्ते पर कोई सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। अरविंद जी की बात सुनकर रजनी ने मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाया। अरविंद जी धीरज जी के जाने के बाद से उनके लिए एक जिम्मेदार पिता होने का फर्ज निभाने में कभी पीछे नहीं हटे थे। आज अगर धीरज जी जिंदा होते तो उनका भी यही फैसला होता, और अरविंद जी ने जब ये बात कही तो ऐसा लगा मानो बाप का साया अब भी उनके सर पर मौजूद है, जो किसी परिस्थिति में अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। माधुरी जी ने कशिश ईशान को चौखट के बाहर भेजा और नए नए शादीशुदा जोड़े की आरती उतारकर स्वागत किया। कशिश ईशान ने साथ में अरविंद जी और माधुरी जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। अभिषेक के पैर छूने को झुके, पर उसने एक बड़े भाई की तरह दोनों को गले से लगा लिया। आखिर में शिखा की बारी आई, वो कशिश के सामने आकर खड़ी हो गई। रजनी ने सबकी तरह कशिश को उससे भी मिलवाया। उसने पहले तो दोनों को शादी की बधाई दी, फिर कशिश को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, भाभी आप तो बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल टीवी में दिखने वाली हीरोइन जैसे। चल झूठी, हीरोइन मेरे जैसी थोड़ी ही होती है, वे तो खंभे जैसी लंबी लंबी होती हैं। परफेक्ट फिगर बॉडी शेप होता है उनका, इतनी सुंदर सुंदर होती हैं, उनके बाल भी रेशम के धागे होते हैं, इतनी अमीर होती हैं वे, मेरे जैसी थोड़ी ही होती हैं। इतनी देर से शांत खड़ी कशिश मौका मिलते ही एकदम से बोल पड़ी। उसकी बातें सुनकर सब हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगे। वहीं ईशान ने बेबसी से अपना सिर हिला दिया। उसका जवाब सुनकर पहले तो हैरान हुई, फिर प्यारी सी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोली, भाभी आप तो बड़ी मजाकिया हैं। वो तो मैं हूँ, कशिश ने बड़ी ही अदा से अपने गालों पर अटखेलियां दिखाती लटों को फूंक मारकर पीछे किया और खुद पर ही इतराने लगी। बाकी सब भी अब मुस्कुरा उठे। वहीं कशिश फिर बोल पड़ी,
वैसे तुम्हें बोलना पसंद है? मुझे तो बोलने का बड़ा शौक है, पर किसी के पास वक्त ही नहीं होता मेरी बातें सुनने का। तुम बात करोगे मुझसे? आज मैं यहीं रहूंगी और हम दोनों सारी रात बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे, साथ में स्नैक्स भी खाएंगे, बहुत सारे हैं मेरे पास। वैसे तो मुझे अपने खाने की चीज़ बांटना ज़रा भी पसंद नहीं, पर तुम मुझे बहुत क्यूट लगी इसीलिए मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूँगी, और हम ढेर सारी मस्ती भी करेंगे। मुझे तो खाना, डांस करना, सोना, गाने सुनना बड़ा पसंद है। कशिश जो एक बार शुरू हुई तो चुप होने का नाम ही नहीं लिया उसने। अब तक एकदम शांत खड़ी थी वो, और अब एकाएक उसको इतनी बात करते देखकर सभी कुछ हैरान हो गए। ईशान जो उसकी बकबक सुनकर कुछ खींच उठा था, उसने उसे चुप करवाने के लिए उसकी हथेली को हल्का सा दबा दिया, जिससे कशिश बोलते बोलते चुप हो गई और उसके मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई। उसने सर घुमाकर नाराजगी से अपने बगल में खड़े ईशान को देखा और बच्चों जैसा मुंह फुला लिया। मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो? दर्द हो रहा है मुझे, हाथ छोड़ो मेरा। तुम अपनी जुबान संभालो, तब से चक्चर लगी हो, थकती नहीं बोलते बोलते? सांस भी लेती हो या बस बोलती ही चली जाती हो? थोड़ी देर भी चुप नहीं रह सकती तुम? कम से कम जगह और हालात ही देख लो। ईशान नाराजगी से पर धीमे स्वर में उसे समझाना चाहा, पर कशिश तो कशिश थी, उसने कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनी तो ईशान की क्या सुनती। उसने ईशान का हाथ छटक दिया और हल्के गुस्से से बोल पड़ी, मैं क्यों देखूं कुछ भी, और तुम होते कौन हो मुझे चुप करवाने वाले? मुझे बोलना पसंद है, मैं तो बोलूंगी। पता है इतनी देर से मैं चुप थी, मेरे बेचारे होंठ बोलते बोलते कितने बेचैन और बेताब हैं, मेरा पेट दुखने लगा है। ऊपर से तुमने मुझे खिलाया भी नहीं और अब डांट भी रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। कशिश के चेहरे पर गहरी उदासी और दुख के बादल छा गए, आंखों में बेबसी झलकने लगी और वो लटकाए नाराजगी से उसे देखने लगी। ईशान अब कुछ बोल नहीं सका। कशिश की बात सुनकर माधुरी जी उसके पास चली आईं और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए सवाल किया, आपको भूख लगी है? कशिश ने अपना निकला हुआ होंठ बाहर निकाला और बेहद दुखी उदास चेहरा बनाकर सहमति में सिर हिला दिया। उसकी मासूमियत सबका मन मोह गई। माधुरी जी मुस्कुराई, फिर शिखा को देखकर बोली, शिखा बेटा भाभी को अपने रूम में लेकर जाओ और हाथ मुंह धुलवा दो। शिखा ने झट से सिर हिला दिया, फिर कशिश को अपने साथ लेकर जाते हुए मुस्कुराकर बोली, चलिए भाभी चलकर हाथ मुंह धो लीजिए, फिर माँ के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। उसके बाद हम ढेर सारी बातें और खूब मस्ती करेंगे। आपको पता है मैं तो घर में बिल्कुल अकेले पड़ जाती हूँ, पर अब आप आ गई हैं ना तो बड़ा मजा आएगा, खूब पटेगी हमारी। कशिश भी उसकी बात सुनकर खुश हो गई। इतनी देर में सभी समझ गए थे कि कशिश एक हंसमुख और चंचल स्वभाव की लड़की है, और कहीं ना कहीं अब ईशान और कशिश के रिश्ते को लेकर कुछ निश्चिंत भी हो गए थे। ईशान के स्वभाव के अनुसार उसे ऐसी ही जिंदा दिल लड़की की जरूरत थी।